پیش خدمت ہے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی پیشکش یاسمین جمیل
السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے ہمارا یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستان اور بھارت کے لیے جبکہ دنیا بھر میں ہمارے سننے والوں کے لیے انٹرنیٹ پر براہ راست نشر ہو رہا ہے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر جہاں آپ اس کی ریکارڈنگ پروگرام کے بعد کسی بھی وقت سن بھی سکیں گے شیئر بھی کر سکیں گے اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے جبکہ اس پروگرام کو اس وقت ہمارے فیس بک پیجز پر بھی سنا جا سکتا ہے جہاں آپ کو اس کا براڈ کاسٹ لنک دستیاب ہے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahainzindagi اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasmeenjameel.voa.urdu تو لیجئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں This here's a story of Cassius Clay who changed his name to Muhammad Ali He knows how to talk and he knows how to fight and all the contenders بلیک سپرمین محمد علی یہ تھا وہ تھیم سانگ جو دنیا بھر کی طرح پاکستان کے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہیوی ویٹ باکسنگ کے ان مقابلوں کے پس منظر میں سننے کو ملتا تھا جب ان کے کسی مقابلے کو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا تھا یہ بلیک سپرمین 20ویں صدی کی ایک شہرہ آفاق شخصیت دنیا اسلام کی ایک معروف ترین شخصیت دنیا بھر کی ایک مقبول ترین شخصیت اور جدید باکسنگ کے بانی اور افسانوی ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن محمد علی اب ہم میں نہیں رہے ان کا حال ہی میں 74 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ایک باکسر کے طور پر 30 برسوں پر محیط ان کے کیریئر اور عالمی شہرت نے سپورٹس کے شعبے میں باکسنگ کو دنیا بھر میں غیر معمولی طور پر مقبول اور معروف کر دیا وہ 3 مرتبہ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن رہے اس باکردار سچے اور حق گو مسلمان اور امریکی اقدار کا احترام کرنے والے ایک باکردار امریکی شہری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں دعوت دی ہے ایک ایسی پاکستانی امریکی شخصیت کو جو پاکستانی امریکی کمیونٹی میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے اور جو گزشتہ 5 برسوں سے دنیا کے 500 سب سے زیادہ بااثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہیں اور جنہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے دنیا اسلام کی اس ممتاز ترین اور غیر متنازع شخصیت اور 3 بار عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن کے ساتھ بارہا ملاقاتیں کی اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی دنیا کے اہم مسائل پر آواز اٹھانے اور انہیں حل کرنے کی کوششوں میں ایک کردار ادا کیا ہمارے مہمان ہیں ایک امام ایک انعام یافتہ مصنف ایک پروڈیوسر اور کمیونیکیشن کے 2 فلاحی اسلامی اداروں کے بانی عبد المالک مجاہد یا عبد الملک مجاہد جو 2011 سے 2015 تک 5 بار دنیا بھر کے 500 انتہائی بااثر مسلمانوں میں شمار کیے جا چکے ہیں وہ دنیا کے پہلے بین المذاہب ادارے پارلیمنٹ آف دا ورلڈز ریلیجن کے بورڈ کے 6 سال تک چیئرمین رہ چکے ہیں وہ نارتھ امریکہ میں پہلے نان پروفٹ اسلامی کمیونیکیشن کے ادارے ساؤنڈ ویژن کے فاؤنڈر صدر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں جو میڈیا کے مختلف ذرائع کی مدد سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے معیاری تعلیمی پروگرام تیار کرتا ہے وہ نارتھ امریکہ میں پہلے نان پروفٹ اسلامی کمیونیکیشن کے ادارے ساؤنڈ ویژن کے فاؤنڈر صدر اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں جو میڈیا کے مختلف ذرائع کی مدد سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے معیاری تعلیمی پروگرام تیار کرتا ہے ساؤنڈ ویژن دنیا بھر میں لاکھوں بچوں خواتین اور مردوں کو نماز اور قرآن پڑھنے میں مدد کر چکا ہے اور ہر روز دنیا بھر کے تقریباً 2,75,000 لوگوں تک اسلامی پیغامات پہنچاتا ہے عبد المالک مجاہد شکاگو کے پہلے ڈیلی مسلم کال ان ٹاک شو ریڈیو اسلام کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں جو دنیا بھر میں لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے لاکھوں سامعین تک پہنچتا ہے عبد المالک مجاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں شکاگو سے ٹیلی فون پر السلام علیکم امام عبد المالک مجاہد صاحب
وعلیکم السلام، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، اور ماشاءاللہ آپ کی اردو تو اتنی نفیس اور شستہ ہے کہ مجھے اب ادب سے بات کرنی پڑے گی۔
آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے تو یہ اسی کا اثر ہے۔ بہت شکریہ ان کمنٹس کا۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام محمد علی کو محمد علی قلعے کے نام سے جانتی ہے، دنیا میں بہت سے لوگ بھی ان کو محمد علی کی بجائے محمد علی قلعے کے نام سے جانتے ہیں، لیکن محمد علی اپنے آپ کو صرف محمد علی کہلوانا پسند کرتے تھے، اس لیے آج ہم اپنے پروگرام میں ان کا نام صرف محمد علی ہی کے طور پر استعمال کریں گے۔
بہت بہت خوشی ہوگی محمد علی کو اس بات سے، اس لیے کہ پوری زندگی وہ اس جدوجہد میں مصروف رہے۔ ابتدا میں انہوں نے قلعے کو ڈراپ کر کے اپنے نام کے آخر میں ایکس لگا لیا تھا، جس طرح مالکم ایکس کے آخر میں ایکس ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسے بھی ڈراپ کر کے محمد علی بہت خوبصورت نام رکھا، اور ان کی اور میڈیا اور پورے امریکہ میں یہ لڑائی رہتی تھی کہ وہ انہیں قلعے کہنا چاہتے تھے، یہ کہتے نہیں میں محمد علی ہوں۔ اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد علی صرف باکسنگ سے ان کا تعلق نہیں ہے، بل بہت کچھ۔ بہت عظیم انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، غریبوں کا خیال رکھنے والے انسان تھے، اسلام پر اتنے پابند تھے کہ نہ صرف خود بھی بلکہ یہ کہ اور لوگوں کو مسلسل وہ کہتے رہتے تھے مسلمان ہو جاؤ میرے سامنے بھی، اور وہ چیزیں ہیں اس پہ اپنے دستخط کر کے لوگوں کو دیتے تھے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے بلکہ وہ ایک نبی تھے اور ہم بھی اس پہ اس طرح ایمان لگتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی ان کا مخلص مسلمان تھے، اور مزاح ان کی شخصیت میں بے پناہ، ایک ہی نشست کے اندر وہ انہوں نے مجھے رلایا بھی اور ہنسایا بھی۔
اور اس وقت جب کہ ان کا انتقال ہو چکا اور ابھی حال ہی میں ہوا، کچھ بتائیے کہ اس وقت امریکہ بھر میں لوگوں کا کیا رد عمل ہے، امریکی مسلمانوں کا کیا رد عمل ہے، اور وہ ان کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار وہ کس طرح کر رہے ہیں؟
دنیا بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے، اور امریکہ میں پورا امریکہ ان کی یاد اور سوگ میں کھڑا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے جنازے میں جگہ جگہ سے تشریف لائیں، اور کئی مسجدوں میں جہاں لوگ بہت دور رہتے ہیں مسجدوں میں غائبانہ نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی، اور لوگوں نے پروگرام شروع کیے ہیں، ان کے دو تین تھے کہ بچوں کو آگے بڑھانا ہے، اور بچوں کے لیے ایک فنڈز ہے، اس فنڈز کے لیے مسلمان پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کی جو بیماری تھی پارکنسن ڈیزیز، اس کو دور کرنے کے لیے لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن پورا امریکہ جو ہے ان کی یاد اور سوگ میں اس وقت موجود ہے، اور محمد علی کو ہر طرح یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ محمد علی جو باکسنگ کا چیمپئن تھا، جس طرح آپ اور ہم بچپن میں ہم دیکھتے تھے محمد علی کی جیت کے ساتھ ہم خوش ہوتے تھے اور ان کی ہار سے ہمارے آنسو نکلتے تھے، اسی طرح انہوں نے امریکہ کو بھی اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو کچھ وہ یاد کر رہے ہیں، کچھ اس چیز کو یاد کر رہے ہیں کہ جب امریکہ نے ویتنام میں بمباری اور جنگ شروع کی، بے پناہ امریکی بھی مارے گئے لیکن بے پناہ ویتنامی ناحق ہوئے، تو اس جنگ کے خلاف جو وہ کھڑے ہوئے، بہت سے لوگ اس کو یاد کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس بات کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ محمد اور علی نام پہ انہیں کتنا فخر تھا، اور اس نام کے خاطر کئی سال تک وہ لڑتے رہے، بالآخر سب کو انہوں نے مجبور کیا۔ کچھ ان کے ہنسی مذاق کو یاد کر رہے ہیں، کچھ وہ ایک اور چیز کرتے تھے جو اپنے ہاں جسے کیا کہتے ہیں جادوگر، تو وہ کرتے یہ تھے، وہ کرتب دکھاتے تھے، پھر لوگوں کو بتاتے تھے یہ کرتب انہوں نے کس طرح ایجاد کیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یوں کیوں کرتے ہو، کہیں گے اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں ان سے ان کے اثر میں نہ آئیں، اس لیے کہ جادوگر جو ہیں وہ تو کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو بھی ان کی چال ہے اس چال کو میں لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے جو جادوگروں کی تنظیم ہے، انہوں نے ان کے خلاف بیان بھی جاری کیا۔ تو ہر ایک مختلف طریقے سے اپنی یادوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ میرے لیے ان کی یادیں تو کراچی تک پہنچ جاتی ہیں، جب میں کراچی یونیورسٹی میں طالب علم تھا اور ان کا میچ ہوتے تھے تو ہم بھاگ کے جاتے تھے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن پہ دیکھنے، اس لیے ٹیلی ویژن عام نہیں تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ان کی 71 میں جو فریزر سے لڑائی ہوئی، جس کو وہ ہار گئے، اور کس طرح پوری یونیورسٹی بند تھی، اور اس کے بعد لوگ رو رہے تھے، تو لوگوں نے اپنے دل کو محمد علی سے وابستہ کیا ہوا تھا، اب وہ دل اور دماغ جو ہے وہ سکون کی نیند سو رہا ہے۔ تو یہ سوگ تو بہت بڑا ہے تو میری یادیں ان سے کوئی 40 سال پرانی ہیں، جو براہ راست اپنی ہیں۔ हालांकि उनको 50 साल से उनकी जंग वगैरह, उनकी लड़ाई और उनका जीतना बॉक्सिंग में, फिर बॉक्सिंग से उनका हटा देना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनके ओहदे को बहाल किया कि नहीं, इनका नाहक इनके ओहदे को वसूल किया गया है। तो पूरी उनकी जो जिंदगी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ाई थी अमेरिका में। पहले अमेरिका में बहुत गैर मकबूल हुए उसकी वजह से, फिर अमरीकियों ने देखा कि कितने उसूल के पाबंद हैं और कितनी कुर्बानी दी, तो फिर वो सब ने उनको कबूल किया।
अच्छा, टेलीविज़न पर तो आपने उनके मुकाबले देखे और खुशी भी का इजहार भी किया और बहुत आप उनसे रिलेट भी करते थे कि वो मुसलमान क्योंकि उस वक्त हो चुके थे जब आपने उनको देखा, लेकिन जब आपने उन्हें बिलमुशाफा पहली बार देखा शिकागो में तो आप उन्हें पहचान नहीं पाए, कुछ ऐसी थी आपकी उनकी मुलाकात?
नहीं पहचान पाया, और मुझे इतनी शर्मिंदगी है, और अब आपने सारी दुनिया को बता दिया। वो ऐसे हुआ कि जून 1977 तो वो एक शिकागो के मेयर ने, इनके इमाम है, उनका नाम है इमाम वारिसदीन मोहम्मद ने जब अपने वालिद साहब अलीजा मोहम्मद की जगह गद्दी संभाली, तो उन्होंने ये सारे लोग उस वक्त नेशन ऑफ इस्लाम के तहत गोरों को शैतान कहते थे और बड़ी अजीबोगरीब सी बातें थीं, अकीदे भी उनके अजीबोगरीब से थे, उन सब को छोड़कर जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में जो आम मुसलमानों की तरह वो सब को ले आए, और फिर उन्होंने ऐलान किया कि हमारी मस्जिदें जो हैं वो सिर्फ काले लोगों के लिए नहीं बल्कि सारे इंसान, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सारे इंसान जो है वो उसमें आ सकते हैं। तो उसको मनाने के लिए उनके एजाज में एक इशाइया दिया शहर शिकागो के मेयर ने, शहर की सारी क्यादत और सारे सियासी लीडर और ताजिर सब लोग मौजूद थे, तो वो मेरे साथ खड़े हुए थे। तो मेरे दाएं हाथ पे एक साहब थे, वो मेरे कराची यूनिवर्सिटी में उस्ताद होते थे, वो भी वहां खड़े थे। उन्होंने कहा ये उल्टे हाथ पे जो खड़ा है इसे पहचानते हो? तो मैंने उल्टे हाथ की तरफ देखा और कहा कि नहीं नहीं पहचानता। तो उन्होंने कहा जरा दोबारा गौर से देखो।
अच्छा।
तो मैंने दोबारा देखा तो मैंने कहा या अल्लाह ये तो मोहम्मद अली है, इसलिए कि हमारे जहन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे उन्हें देखे भी अंदाजा हुआ कि ब्लैक का मतलब ये कि सियाह होंगे गहरे। अच्छा, इनका रंग तो मुझसे यानी मेरा पाकिस्तानियों की तरह यानी सांवला रंग है, उनका रंग तो बिल्कुल गोरे आदमी की तरह जिस तरह पाकिस्तान में गोरे लोग होते हैं उस तरह का चमकता हुआ गोरा सा उनका चेहरा था। तो मुझे तब अंदाजा हुआ कि अमरीका के अंदर जिन्हें काले इंसान कहते हैं वो उनके रंग जो है पाकिस्तानियों की तरह वो गोरे रंग से लेकर काले रंग मकरानी भाइयों की तरह के रंग तक के सर तरह के होते हैं वो भी।
अच्छा, अच्छा।
तो इस तरह तो फिर मैंने उनसे कहा कि उनसे फिर मैंने सलाम किया और फिर मेरे हाथ में उनके इमाम का वो दावतनामा था एक बहुत बड़ा, वो मैंने दिया तो उस पर उन्होंने दस्तखत अपने किए और मुझसे पूछा कहाँ से हो, तो मैंने जब बताया पाकिस्तान तो बहुत खुश हुए। तो उनसे मुलाकात जो रही थी मेरी हादसतन हुई इस तरीके से, लेकिन वो ताल्लुक फिर हमारा चलता रहा।
तो फिर कैसे, किन किन मौकों पर फिर आप उनके साथ मिले और फिर आपने बाद में उनके साथ कुछ अहम इश्यूज पर काम भी किया, कुछ उनका जिक्र करें?
जी, फिर मैं उस वक्त तो मैं अमरीका सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस में यहाँ तकरीर करने के लिए मुझे पाकिस्तान से बुलाया गया था, तो उस वक्त मेरी इत्तफाकन मुलाकात हुई। जब मैं यहाँ बाद में तालिबे इल्म के बाद आया तो इत्तफाकन जहाँ मैं तालिबे इल्म था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, उससे उसके करीब ही उन्होंने मस्जिद बनानी शुरू की। तो शिकागो में एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है जो पाकिस्तानी तर्ज की मस्जिद है। अमेरिका में मैंने कोई और मस्जिद फिलहाल ऐसी नहीं देखी जिसके मीनार देखते ही आपको पाकिस्तान याद आ जाए, और आज सुबह जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो उस मस्जिद के करीब ही से वो ट्रेन गुजरी और कल शाम मैं उसी मस्जिद के करीब मौजूद था। तो मस्जिद मोहम्मद अली ने अपने पैसे से बनाई है।
अच्छा।
उस मस्जिद की एक और निशानी ये है कि ओबामा सदर साहब अमेरिका के जो है उनका घर उसके करीब ही है, यानी पैदल चल के उनके घर जा सकते हैं। तो जब ओबामा जीते तो उनकी जो तकरीब थी उनकी यानी सदर बनने की, तो उसमें मैं भी था। तो एक जगह एक तकरीब में ओबामा मुझसे यानी हिलरी क्लिंटन, प्रेसिडेंट क्लिंटन बैठे हुए थे, जोसेफ बाइडन उनकी बीवी बैठे हुए थे और मैं था, और उसके दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ओबामा, मिशेल ओबामा थी, और उनके पीछे जो थी उनकी दादी बैठी हुई थी जो कीनिया से आई थी, उन्होंने हिजाब बांधा हुआ था। तो मैंने उनको जब बताया कि इनके घर के करीब मस्जिद है, तो उसने कोई इजहार नहीं किया, लेकिन जब मैंने बताया कि मोहम्मद अली ने मस्जिद बनाई है तो वो उनकी जो दादी अम्मा आई थी कीनिया से, वो बड़े जोश व खरोश का उन्होंने इजहार किया।
अच्छा,
तो उस मस्जिद की वजह से मेरे उनसे कनेक्शन हुए। उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाता था। मस्जिद के चलाने वाले जो थे मोहम्मद अली के मैनेजर जाबिर मोहम्मद, उनकी रहलत हो गई, जो भाई थे उनके इमाम अलीजा मोहम्मद, उनके भाई वारिसदीन मोहम्मद के, उनकी रहलत हो गई अब दोनों की। तो उस मस्जिद की वजह से रब था। तो इब्तदा में एक चीज हुई कि यहाँ हमने जब कुर्बानी की, जब ईद उल अज़हा में लोग कुर्बानी करते हैं तो उसमें है ना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि एक तिहाई अपने लिए रख लो वो गोश्त कुर्बानी का, एक तिहाई रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दे दो, और एक तिहाई गरीबों का हक है। पाकिस्तान में तो सबको पता है, और पाकिस्तान में गरीब ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला उन गरीबों को हिम्मत दे और गुर्बत से बाहर निकले। अमेरिका में ऐसे गरीब को ढूंढना जिसको आप गोश्त ले जाके दे दें, बड़ा मुश्किल काम है। तो हम गाड़ियों में फ्रीज करके गोश्त को लेके घूमते थे गरीबों की तलाश में। तो उसका हमने हल ढूंढा, वो ये कि फिर जो मस्जिद है, मस्जिद फातिर उसका नाम है, जो मोहम्मद अली भाई ने बनाई है, अल्लाह ताला उनको इज्जत और बरकत दे इस बिना पर भी। तो वहाँ हमने फिर ऐलान किया कि यहाँ गरीबों को गोश्त तकसीम होगा, और वहाँ फिर हम साला साल वो गोश्त को फ्रीजर में लेकर जाते थे, ट्रक सारे मुसलमान देते थे और फिर हम वहाँ ले जाते थे, और वहाँ मोहम्मद अली आते थे और वहाँ अपने हाथ से मोहम्मद अली गरीबों को ये तकसीम करते थे, और मैं उनके साथ, मैं उनके हाथ में देता था, वो आगे तकसीम करते चले जाते थे।
तो
ये सबसे पहली
बार
चीज है जो मुझे याद है 80s के अंदर।
अच्छा।
मैंने उनके साथ की, और उस जमाने में खासी मुलाकात भी होती थी, गपशप भी होती रहती थी।
बहुत शुक्रिया इमाम अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ गुजरी अपनी यादों को हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करने का। हमारी गुफ्तगू भी जारी है, एक ब्रेक ले लें, जिसके बाद हम आपके उस मिशन की बात करेंगे जिसके लिए आपने अपने इदारे साउंड विजन के तहत मोहम्मद अली के साथ काम किया बोस्निया के मुसलमानों के लिए। Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, I'm वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के प्रोग्राम हरदम रवाह ज़िंदगी में हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की दुनिया के आलमी हैवी वेट चैम्पियन मोहम्मद अली के बारे में, जो अब हम में नहीं रहे, और उनको और उनकी शख्सियत को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं अपने मेहमान अब्दुल मालिक मुजाहिद के साथ। अब्दुल मालिक मुजाहिद एक इमाम, एक इनाम याफ्ता मुसन्निफ, एक प्रोड्यूसर और कम्युनिकेशन के दो फलाही इस्लामी इदारों के बानी हैं। 2011 से 2015 तक 5 बार दुनिया भर के 500 इंतहाई बाअसर मुसलमानों में शुमार किए जा चुके हैं, और वो शिकागो के पहले डेली मुस्लिम कॉल इन टॉक शो रेडियो इस्लाम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जो दुनिया भर में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लाखों सामईन तक पहुँचता है। वो नॉर्थ अमेरिका में पहले नॉन प्रॉफिट इस्लामी कम्युनिकेशन के इदारे साउंड विजन के फाउंडर, सदर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जो मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए की मदद से मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए मायारी तालीमी प्रोग्राम तैयार करता है। साउंड विजन दुनिया भर में लाखों बच्चों, ख़वातीन और मर्दों को नमाज और कुरान पढ़ने में मदद कर चुका है, और इस वक्त हर रोज़ दुनिया भर के तकरीबन 2,75,000 लोगों तक इस्लामी पैगाम पहुँचाता है। हमारे मेहमान अब्दुल मालिक मुजाहिद हमारे साथ मौजूद हैं शिकागो से टेलीफोन पर। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, आपका इदारा साउंड विजन, जो मुसलमान और गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामी तालीमात और अखलाकियात की तालीम देने के लिए मुस्लिम कार्टून किरदारों के जरिए वीडियोस बनाता है, उसके बैनर तले आपने बोस्निया के मुसलमानों के लिए भी काम किया। कुछ उसका जिक्र करें कि कैसे मोहम्मद अली की मौजूदगी ने इस मिशन की तकमील में अहम किरदार अदा किया।
मैं समझता हूँ कि बोस्निया पहली मर्तबा था जब अमेरिका के मुसलमान जागे, इसलिए कि बोस्निया के मुसलमान तो सारे गोरे मुसलमान हैं, और उनको मारा पीटा जा रहा था उनके इस्लाम की वजह से। हालांकि उसमें बोस्नियन मुसलमान चूंकि कम्युनिज्म के तहत रहे 50 साल, तो उसमें दीनदार भी थे लेकिन ये कभी हर तरह के लोग थे ना, हर तरह के इंसान होते हैं लेकिन मुसलमान भी हैं साथ साथ। तो जब लोगों ने यहाँ देखा तो बहुत परेशान हुए कि अगर गोरों के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा। तो इस पर शिकागो की मसाजिद ने, मस्जिदें जो हैं शिकागो की, उनके इमाम और सुदूर इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे बुलाया। चूँकि साउंड विजन जो है, साउंड विजन मुसलमानों के लिए और गैर मुसलमों के लिए मीडिया भी करता है इब्लाग आमा, और साथ में हम पब्लिक रिलेशंस का भी काम करते हैं कम्युनिटी के लिए। तो तमाम मसाजिद ने मुझे बुलाया और हमने फिर बोस्निया टास्क फोर्स USA के नाम से एक कॉलिशन बनाया जिसमें मुसलमानों की सारी तंजीमें थीं। दिक्कत मुझे ये थी कि मुसलमानों को अमेरिका में कोई जानता नहीं है, मुसलमानों की कोई बहुत ज्यादा हैसियत उस जमाने में नहीं थी। अब तो माशाल्लाह मुसलमान खासे आगे आ चुके हैं, लेकिन 20 साल पहले जब 1990s के शुरू में लोग बहुत ज्यादा मुसलमानों को नहीं जानते थे, उनकी तनसीमों को नहीं जानते थे, हमारी लीडरशिप को नहीं जानते थे। तो मसला ये था कि अगर मुसलमान अमरीका को कहेंगे कि भाई तुम जाके रोको ये बोस्निया में जो जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, इसलिए कि यूरोपियन तो कुछ नहीं कर रहे थे, यूरोप कहते थे नेवर अगेन, लेकिन जर्मनी खामोश, फ्रांस खामोश, बर्तानिया खामोश, वो मरने दे रहे थे इन मुसलमानों को। तो हमने कहा हम अमेरिका में आखिर क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हमारा दोस्त मोहम्मद अली जो है, मुसलमानों को लोग नहीं जानते, मोहम्मद अली को तो सब लोग जानते हैं। तो मैंने फिर मोहम्मद अली से बात की और पहला काम जो हमने किया वो हमने एक डेलीगेशन बनाया मुसलमान लीडरशिप का, और उसमें मोहम्मद अली डेलीगेशन के लीडर के तौर पर उन्हें शामिल किया। और न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के सब मुसलमान इदारों से जाके हमने मुसलमान जो सफीर थे वहाँ यूनाइटेड नेशन से हमने मुलाकातें शुरू की। तो सफीर ने जो है वो जैसे ही मोहम्मद अली का नाम सुने, न सिर्फ वो हमें अपॉइंटमेंट दे दें बल्कि वो कैमरामैन को भी बुला लें और ऑटोग्राफ मोहम्मद अली का लेने के लिए बेताब हों, तो ये तो बहुत ही कामयाब हमारा वो रहा मोहम्मद अली की वजह से। लेकिन एक चीज उसमें बड़ी कामयाब जो अहम हुई वो ये हुई कि जब मोहम्मद अली और हमारा वफ्द जो था, जो वफ्द लेकर गए वहाँ, तो सेनेगाल के जो सफीर थे वो खड़े हो गए। बाकी लोग तो हमें चाय भी पिला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं और मोहम्मद अली के दस्तखत भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अपना वक्त और मेरा वक्त ना जाया करें। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC के सदर थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा वक्त जाया मत कीजिए, हमारी हुकूमत तो वो करती है जो आपकी हुकूमत कहती है करने के लिए, तो आप जाइए अपनी हुकूमत से बात कीजिए। तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये करना शुरू किया। हमने सारी तवज्जो Washington DC पे लगा दी और फिर कोई 100 शहरों में हमने मुजाहरे किए। तो मुसलमान तो इकट्ठे थे ही, लेकिन बोस्निया में चूँकि मुसलमान औरतों के साथ जुल्म हो रहा था, मुसलमान औरतों की बेहरमती और बेइज्जती के अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वो किए जा रहे थे। 50,000 मुसलमान औरतों की बेहरमती की गई बोस्निया में। तो अमेरिका की औरतों की सबसे बड़ी तंजीम है, उसका नाम है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन नाउ, उनसे फिर हमने राबता कायम किया और इनके जरिए 100 शहरों में हमने मुजाहरे किए। तो मोहम्मद अली और उनके इमाम वारिसदीन मोहम्मद की पूरी हिमायत शामिल थी और बिलाखिर सबसे बड़ा मुजाहरा कम से कम 5 लाख मुसलमान अंदाजन होंगे। फिर हम Washington DC में हमने किया व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के सामने, और वहाँ फिर हमने अमरीकी हुकूमत से मुतालबा ये किया कि इस जुल्म को और जो जेनोसाइड हो रहा है बोस्निया मुसलमानों को, इसे रोकने के लिए अमरीका मुदाखलत करे। और फिर हम अमरीका के शुक्रगुजार हैं, और ये अमरीका में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि कांग्रेस में जो हमने करारदाद पेश की वो पास हुई है, पहली मुसलमानों ने कांग्रेस में कामयाबी हासिल की। फिर व्हाइट हाउस पे हमने मुजाहरा किया, फिर व्हाइट हाउस ने मुदाखलत की और वहाँ सर्बियों पे बमबारी करके जुल्म को जो हो रहा था उसको रोका गया। ये अमेरिका ने एक जुल्म को रोकने के लिए बहुत कोशिश की, अफ्रीकी मुसलमानों ने पहली मर्तबा कोशिश की और कामयाब कोशिश की। और उसका एक बड़ा हिस्सा ये है कि रेप जो यानी बेहरमती औरतों की करना है, रेप इंटरनेशनल लॉ में बैन अल-अक़वामी कानून में पिछले 150 साल में इतने कवानीन बने, कभी रेप को वार क्राइम नहीं शुमार किया गया। ये हम साउंड विजन में, आपका ये बंदा जो आपसे बातचीत कर रहा है, ये हमारी फिक्र थी। साउंड विजन ने फिर तहरीक चलाई, बोस्निया टास्क फोर्स को, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल किया और अमेरिका की कांग्रेस ने पहली मर्तबा क़रारदाद पास की कि इसको वार क्राइम होना चाहिए। फिर आयशा अदविया वगैरह इसको यूनाइटेड नेशंस ले गए, 25,000 लोगों ने यूनाइटेड नेशंस के बाहर मुजाहरा किया और बिलाखिर ये बैन अक्वामी कानून का हिस्सा हो गया कि जंग के दौरान अगर आपने किसी औरत की बेहरमती की तो इसको वार क्राइम शुमार होगा। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है ह्यूमैनिटी को, जो शिकागो के मुसलमानों ने $50,000 इकट्ठे किए, सानविजन की जिम्मेदारी लगाई और मोहम्मद अली और उनके इमाम की सपोर्ट से ये हमने पूरा का पूरा काम किया। जी हाँ, मोहम्मद अली अगर ना होते जिनको सब जानते हैं तो अब्दुल मलिक चपेदी चपेदी का शोरबा, इस मुहावरे को भी 30 साल के बाद मुझे याद आया है, हमें कौन जानता है। इन लोगों की मदद से हिकमत और सोच हमारी थी, लोगों को आमादा हमने किया, जुलूस पे लोगों को हम लेकर आए, लेकिन मोहम्मद अली और वारिसदीन मोहम्मद की हिमायत के जरिए सारा।
तीसरा जो काम आपने उनके साथ किया उसे भी मुख्तसरन बता दीजिए।
उनके साथ तो बहुत से काम किए हैं हमने, लेकिन आप किस काम का पूछना चाहती हैं तो मैं फिर उसका तस्करा, आप फलस्तीन का, मैं
फलस्तीन का, हाँ, फलस्तीन के बारे में पूछ
किया था। अब फलस्तीन का ऐसा है कि अमेरिका में इस वक्त आधे से ज्यादा नौजवान जो हैं वो फलस्तीन पे जो जुल्म है, जो ज्यादती है, उसके खिलाफ हैं और बोलते हैं, लेकिन ये कि अभी भी अक्सरियत लोगों की जो है वो फलस्तीन की आज़ादी और फलस्तीन के हुकूक की हिमायत नहीं करती। तो ये जब फलस्तीन पर एक मर्तबा इसराइल ने हमला किया तो शहर में मुसलमान इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि इस पर हमें एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करना चाहिए। एहतजाजी मुजाहरे में कई हज़ार लोग आए, उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे लेकिन बहुत से गैर मुस्लिम भी हमारे साथ आए। तो मैंने सोचा कि दोबारा मोहम्मद अली अगर आएंगे तो फिर सारा इबलाग आम्मा, टेलीविजन और रेडियो वाले और सहाफ़ी सब आएंगे उनकी वजह से। तो वो तरकीब फिर हमारी सोच कामयाब हुई और यहीं जहां मैं बैठा हुआ हूं यहां से सिर्फ ये नहीं समझिए कि 500 कदम दूर वो मुजाहरा शुरू हुआ, जो शहर का जो मरकज है वहां से, और फिर पूरे शहर में घूमता रहा। तो मोहम्मद अली तशरीफ लाए और उनकी वजह से जो बहुत से सहाफ़ी भी आए, तो वो मुजाहरा जो था एहतजाज के लिए था लेकिन साथ में वो मोहम्मद अली से दोस्ती और मोहब्बत का भी जरिया बन गया हज़ारों लोगों के लिए, और लोग रुकते गए और आम लोग भी आके मुजाहरे में शामिल होते गए जिन्हें ये नहीं मालूम था कि मुजाहरा किस लिए हो रहा है, लेकिन वो मोहम्मद अली है तो वो मोहम्मद अली के साथ वो भी आ गए। तो मोहम्मद अली बहुत सख्त थे इस बात में कि फ़लस्तीन का हक है, फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। अमेरिका में जो कॉलेज जाने वाले लोग हैं इसमें तो अब 55% से ज़्यादा लोग, कॉलेज जाने वाले जो तलबे इल्म हैं वो फ़लस्तीन की आज़ादी की हिमायत करते हैं। तो उस मुजाहरे में वो आए, उसमें एक लतीफ़ा ये हुआ कि एक रिपोर्टर भी थे तो एक नौजवान गोरी खातून CBS जो यहाँ का एक बड़ा चैनल है टेलीविज़न का, उसकी नुमाइंदा थी, वो कहने लगी कि मोहम्मद अली यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मोहम्मद अली फ़लस्तीनियों की हिमायत में आए तो उसकी समझ में नहीं आया कि फ़लस्तीनियों की हिमायत क्यों कर रहे हैं। तो मैंने पहले समझाना चाहा कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म होता है ये वो, लेकिन बिलाखिर मुझे उसे बताना पड़ा कि मोहम्मद अली मुसलमान हैं इसलिए वो ज़्यादा महसूस करते हैं फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है। उस पर वो कहने लगे अच्छा मोहम्मद अली मुसलमान है, तो ये बाज़ लोगों को अभी भी नहीं पता कि मोहम्मद अली मुसलमान है, इसलिए कि मोहम्मद अली ना सिर्फ बॉक्सर के तौर पर मारूफ हैं, अमेरिका में जो जंग के ख़िलाफ़ जद्दोजहद उन्होंने की वियतनाम के ख़िलाफ़ उसकी वजह से भी मारूफ हैं, मोहम्मद अली के नाम पे उन्होंने लड़ाई की उस पर भी वो मारूफ हैं, तो अफ्रीकन अमेरिकन के भी हीरो हैं, खेलने वालों के भी हीरो हैं। ओलंपिक जब अमेरिका में हुआ तो उसकी मिशेल बरदारी उनकी जिम्मेदारी हुई तो उसकी बुनियाद पर भी पॉपुलर हैं, बहुत से लोगों को पता है कि मुसलमान हैं, और बहुत से ऐसे लोग अमेरिका में पाए जाते हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि मोहम्मद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, अब इसका क्या किया।
तो बहुत सारे पहलू हैं उनकी शख्सियत के, लेकिन बुनियादी पहलू जो है जाहिर है वो बॉक्सिंग है, और उन्होंने बॉक्सिंग को एक आर्ट बनाया और इस खेल को इतना दिलचस्प बना दिया, जो मशहूर है कि तितली की तरह रक्स करो और फिर शहद की मक्खी की तरह डंग मारो। तो ये उनका वो मुनफरद अंदाज था जिसने उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया। तो कुछ बताइए हमारे सुनने वालों को, आपने तो उनका खेल टेलीविजन पर तो आप
बल हमने तो टेलीविजन ही से देखा हाँ। है अमेरिका आने से पहले पहले वो यानी रिटायर हो चुके थे। ये बात सही है, बॉक्सिंग का मैच कितने पाकिस्तानियों ने देखा होगा मोहम्मद अली से पहले, मैंने कम से कम कोई नहीं देखा था, आपने भी शायद कोई ना
नहीं,
देखा
नहीं,
हो
बिल्कुल नहीं।
यानी मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग के खेल को एक बहुत ऊंचा मकाम दिया, और उसकी वजह बॉक्सिंग में उनका फन नहीं था, उसकी वजह जो थी उनकी गुफ्तगू और उनका उनकी बातचीत, उनकी शायरी। और फिर वो तो चंद ही साल के अंदर फिर वो मुसलमान हो गए इब्तदाही के अंदर, और उसका नतीजा ये निकला कि चूंकि वो मुसलमान हो गए तो फिर वो हो गया कि अब वो उनके खिलाफ लोग यहाँ होने शुरू हो गए, और जितने लोग उनके खिलाफ होते चले गए उतना ही ज्यादा वो आगे बढ़ते गए। मसलन ये कि उनका नाम अभी किले ही था जबकि उन्होंने समर ओलंपिक्स में वो जीते, और जो सलम ओपर ओलंपिक में जीते जबकि यहाँ आए वो अमेरिका वापस, तो अमेरिका के अंदर उन्हें जो है वो खाने के रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकते, इसलिए कि 1960s में अभी सिविल राइट की तहरीक नहीं चली थी और बहुत से ऐसे अमेरिका में खाने की जगह थी। पाकिस्तानियों को ताज्जुब होगा इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से तो तमाम मुसलमानों के यहाँ लोग थोड़ी बहुत होते हैं, वो काला है, गोरा है, चपटा है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बाज़ मुसलमान भी, लेकिन बहसियत मजमू मुसलमान में किसी के खिलाफ ये तासुब नहीं होगा कि इसका रंग ये है लिहाजा उससे ही किया जाए। अब देखिए मेरे बेटे का नाम बिलाल है, वो बिलाल हबशी के नाम पे है ना, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आज़ाद कर दिया। यही वजह थी कि अफ्रीकन अमरीकी जो अमरीका में बहुत से थे वो इस्लाम के करीब आए इस वजह से। तो जब मोहम्मद अली ने ये देखा कि कहाँ तो वो ओलंपिक चैंपियन है, लाइट वेट गोल्ड मेडल उन्होंने समर ओलंपिक्स में मिला है, जब अमेरिका में जो लुईविल में आए जहाँ उनका जनाजा वगैरह और सारी तकरीबात हुई तो वहाँ वो आए तो वो जनाब एक रेस्टोरान में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए कि वो वेट्रेस कह रही है कि ये तो वाइट ऑनली है, यहाँ तुम खाना नहीं खा सकते। तो इस वजह से उन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल जो था उसको ओहायो रिवर में फेंक दी। अब उसी ओहायो रिवर के किनारे अली मोहम्मद अली सेंटर है। मोहम्मद अली सेंटर में जब मैंने नमाज पढ़ी तो मेरे सामने वो दरिया था जिस दरिया के अंदर उन्होंने अपने गोल्ड मेडल को भेजा, और उसी मोहम्मद अली सेंटर में उनकी जद्दोजहद भी है। तो उनकी जद्दोजहद का बड़ा हिस्सा वहां से बॉक्सिंग से फिर आ गया रेसिज्म के खिलाफ जद्दोजहद करने में, तो यहाँ से वो पॉपुलर होने शुरू हुए। और फिर जब जैसे ही उन्होंने अपना नाम बदला, उस नाम को उन्होंने मोहम्मद अली कर दिया 64 के अंदर जब उन्हें ऐलान किया, तो फिर उनकी ये जद्दोजहद और बढ़ गई। तो बॉक्सिंग, मोहम्मद अली, इस्लाम और रेसिज्म के खिलाफ जद्दोजहद, ये चारों अनासिर मिलकर बॉक्सिंग को फिर प्रमोशन होनी शुरू हो गई। सोनी लिस्टन का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था कल रेडियो पे गाड़ी चलाते हुए, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली को ग्रेटेस्ट बॉक्सर करना कहना दरअसल मोहम्मद अली की तौहीन है। तो मैं हैरान हुआ कि ये सोनी लिस्टन जो खुद चैंपियन माशाल्लाह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने फिर उसकी वजाहत की, वो तो रेसिज्म के खिलाफ जद्दोजहद के अमरीका में लीडर थे, और ये बात बिल्कुल सही है। कौन आदमी है जो अपना गोल्ड मेडल फेंक देगा, कौन आदमी है जो हैवीवेट चैंपियनशिप को से दस्तबरदारी इख्तियार करेगा। तो वो रेसिज्म कैंपेन के लीडर बने, साथ में एंटी वार मूवमेंट के लीडर बने। अमेरिका में यूनाइटेड नेशनल एंटी वार कोलिशन है यूनेक के नाम से, मैं उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। हम सब जंग के खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, हम समझते हैं कि अमरीकी हमारे टैक्स के जो पैसे हैं वो अमन के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, इंसानों को गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, बाकी बजाय इसके कि जंग जदल के लिए वो इस्तेमाल हो। तो मोहम्मद अली हमारे इस एतबार से लीडर थे, तो उन्होंने वियतनाम के खिलाफ उस वक्त बात की जब कोई बात नहीं करता। अब तो जनाब वो वियतनाम वार के खिलाफ जो लोग बड़े हैं वो मुल्क के सदर बने, सिर्फ ओबामा नहीं बल्कि और लोग भी, ओबामा वियतनाम तशरीफ ले गए, ओबामा की अब वियतनाम की अब कदर की जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन मोहम्मद अली उस जमाने में जंग के खिलाफ बोल रहे थे जब कोई नहीं बोलता,
जब कोई नहीं बोल रहा था।
तो इस वजह से तो बॉक्सिंग का तो बड़ा फायदा हो गया इनके एंटी वार होने की वजह से, इनके रेसिज्म के खिलाफ होने की वजह से, और इनके मुसलमान होने की वजह से, यानी बॉक्सर्स को बहुत पैसे मिलने लगे और बॉक्सर ने बहुत पैसे बनाने शुरू किए।
एक और चीज जो आप उसका जरूर जिक्र करेंगे कि उनकी जो जहानत थी, उन्होंने बॉक्सिंग में जो एक क्या कहना चाहिए यूनिक चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई, और वो ट्रिक करते थे कि खूब पहले मुक्के खाया करते थे, हरीफ समझता था कि वो थक गए हैं, और पब्लिक भी समझती थी कि वो थक गए हैं, लेकिन अचानक वो फिर उड़ते थे चीते की तरह और फिर दो चार मुक्कों के बाद उसको शिकस्त दे देते थे।
जी हाँ, वो उनकी टेक्निक भी है, अगरचे मैं बॉक्सर तो नहीं हूँ, मैं तो हॉकी खेलता रहा हूँ, फील्ड हॉकी, वो उनके मिजाज का हिस्सा भी बना रहा। मुझे याद है कि इनका एक इंटरव्यू मैं कर रहा था, अभी मौका आएगा उसका भी तस्करा करेंगे, उनके घर में बैठे हुए 20 साल पहले, वो एकदम गुफ्तगू करते करते हमारी बातचीत चल रही थी, हम साउंड विजन के 4-5 लोग थे, उनकी अहलिया सिस्टर लॉनी अली वो भी सामने बैठी हुई थी, एकदम मोहम्मद अली खर्राटे लेने लगे। तो मैंने कहा ये क्यों कर रहे हैं, ये सो गए, हमारी बातचीत चल रही है। तो मैं भी उनकी तरफ देख ही रहा था कि उनकी बीवी ने कहना शुरू किया कि ये अभी भी जो है ये इनको कभी इस तरह नींद आ जाती है तो हॉप के अंदर जो है मुक्के चलाने लगते हैं जो फ्रेजर के ऊपर। लेकिन जो फ्रेजर से वो हारे थे तो जो फ्रेजर जो था उनके दिमाग पे मुसल्लत रहता था, तो कहेंगे अभी भी जो है ख्वाब के अंदर ये जो फ्रेजर से लड़ाई करने लगते हैं। अरे जनाब, उन्होंने धड़ से ऐसे जोर से मुक्का चलाया जो मेरी नाक के करीब आके रुका।
अच्छा।
लग जाता तो मेरी नाक तो शहीद हो ही जाती। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे। तो फिर वो खिलखिला के मोहम्मद अली हंसने लग गए और लानी हंसने लग गई। तो ये उनका एक खेल था। तो उन्होंने वाकई हमें फूल कर दिया, बिल्कुल बेवकूफ बना दिया, हम तो समझे कि ये वाकई जो है मुक्के चलाने लग गए। तो ये आपकी टेक्निक जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, वो इस तरह करते थे कि यानी लोगों को ये अंदाजा हो कि शायद वो पिट जाएंगे वगैरह, और वो जो थे अपनी जो उनकी ढाल जो थी उसको नीचा कर देते थे दूसरे बॉक्सर्स, और फिर अचानक जनाब चीते की तरह हमला करके उन्हें काबू कर लेते थे। लेकिन वो सारी चीजें जो फ्रेजर के मामले में नहीं चली, तो वो अब उन्होंने जोक बना लिया जो फ्रेजर को। तो चाहे वो हंसी मजाक, चाहे वो बॉक्सिंग के पहले वो दुश्मन जिससे मुकाबला करना है उसको इतना उसका मजाक उड़ाते थे, उतना उस पर तंज करते थे कि वो गुस्से में आ जाता था। अच्छा, इनका मकसद ही होता था कि वो गुस्से में आ जाए, और वो लड़ाई के दौरान मुकाबले के दौरान भी तंज मजाक करते रहते थे ताकि उसको गुस्सा आ जाए, और ये खुद ठंडे मिजाजी के साथ रहते थे। लेकिन उनका आम भी मैंने देखा कि हंसी मजाक उनकी शख्सियत भी साथ। तीसरी चीज जो है वो कोई मौका जाया नहीं देने देते थे दूसरे आदमी को इस्लाम के बारे में बताने के लिए ना। जैसे ही मौका मिले वो इस्लाम के बारे में गुफ्तगू शुरू कर देते थे और अपना बस्ता खोल के वो चीज। एक चीज जो बड़ी लंबी मेरी यानी कई घंटे हमने गुजारे उनसे, उनके खानदान से सांडविजन का एक दूसरा भी ताल्लुक है, वही कि सांडविजन मुसलमान बच्चों के लिए एक प्रोग्राम बनाता है एडम्स वर्ल्ड। तो एडम्स वर्ल्ड ये 2 से 7 साल, 2 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों के कैरेक्टर्स वगैरह हैं और उसमें कुछ इस्लाम की बातें और कुछ अखलाक, कुछ आदाब और कुछ नमाज कैसे और वजू कैसे ये वो। तो मोहम्मद अली की बीवी जो हैं उन्होंने, उनके जो इस वक्त बीवी हैं उनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, पिछली बीवियों से उनके मोहम्मद अली के 9 बच्चे हैं लेकिन इस बीवी से कोई बच्चे नहीं हैं। तो उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, उसका नाम उन्होंने रखा असद। तो वो असद के लिए वो उन्होंने सारे एडम्स वर्ल्ड खरीदे हुए थे। तो एक दिन उन्होंने कॉल किया, कभी कभार मैं साउंड विजन का फोन खुद उठा लेता हूँ देखने के लिए कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वो लॉनी अली फोन पे थी, तो वो कह रही थी कि मुझे एक और सेट एडम्स वर्ल्ड का भेज दे। तो वो तो मैंने कहा तुम्हारे पास तो है ये एडम्स वर्ल्ड, तो कहने लगे नहीं, वो असद का ये हो गया है कि उसने सैकड़ों मर्तबा एडम्स वर्ल्ड को देख लिया है, अब उसका खेल ये हो गया है कि जब वो एडम वर्ल्ड का कैरेक्टर है, एडम पपेट है, तो उसके बोलने से पहले ये वो बोल देता है। तो लेकिन इतनी मरतब देख चुका है कि वो टेप घिस गए हैं, तो मैं नया सेट लेके उसे देना चाह रही हूँ। तो इस पे फिर बातचीत हुई, तो हमने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, ये बच्चों का एक पर्चा हमने निकाला है यंग मुस्लिम के नाम से। तो कहने लगे साउंड विजन का, हमने कहा हाँ साउंड विजन का। तो कहने लगे तुम आ जाओ घर पे। तो वो फिर शिकागो के बाहर एक अलकपून एक होता था माफिया के, जिन्होंने फिल्में देखी हैं उन्हें अलकपून का नाम पता होगा, क्राइम मॉब का लीडर होता था वो शिकागो में। तो शिकागो से जरा दूर 1 घंटे के फासले पे अलकपून का एक घर, एक बड़ा सारा 15 एकड़ या पता नहीं कितने में घर है, वो उन्होंने मोहम्मद अली भाई ने खरीदा हुआ था। तो वहां हम सब गए, तो बड़ा अच्छा वक्त रहा उनके पास। ये भी कहते जरा फैमिली वगैरह को लेकर आओ बाद में, तो यहाँ तो हॉर्सेस वगैरह हैं, बच्चे खुश होंगे। तो वहाँ मोहम्मद अली के जो इंटरव्यू था वो मुझे बहुत याद रहता है, बल्कि यूँ समझिए कि मोहम्मद अली के साथ सबसे तफसीली और सबसे लंबी मुलाकात जो घरेलू माहौल में हुई वो वही हुई, वो तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 20 साल पहले यानी जून की शुरू की दिन थे 1996 में, जब उनके घर में कई घंटे हमने गुजारे। उसमें जो इंटरव्यू थे उसमें कई तरह की बातें थी और वो सानविजन की वेबसाइट पे लोग हैं, आप चाहें तो अपनी वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे लिंक डाल दें ताकि लोग उसे पढ़ सकें।
तो जरूर
उस इंटरव्यू में मोहम्मद अली के बारे में लोग बाक्सर जानते हैं, लोग ये जानते हैं कि वो वार के खिलाफ थे, वो ये जानते हैं कि रेसिज्म के खिलाफ उसने अपने तमगे को फेंक दिया, ये सब कुछ लोग जानते हैं, लेकिन उनके इस्लाम से मोहब्बत का लोगों को अंदाज़ा इतना नहीं है। तो हमारे soundvision.com पर 4-5 आर्टिकल्स हैं जो उस इंटरव्यू पे मबनी हैं। उनमें से एक इंटरव्यू में वो लतीफा हुआ जो जो फ्रेजर वाले वो खर्राटे लेने लगे और फिर अपने मुक्के चलाने शुरू कर दिए उन्होंने हम पे, तो फिर वो लतीफा
तो कोई खास बात हुआ जो जो कोई खास बात जो उस इंटरव्यू की थी जो आपको अब तक याद है और आप चाहेंगे कि लोगों को पता लगे जो पढ़ भी न सके।
चीज जो मैंने अभी कल रात तुर्की से वहाँ की न्यूज एजेंसी ने कॉल किया और वो साहब खुद तुर्की के बॉक्सर हैं और तुर्की की बॉक्सिंग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन में, उन्हें मैंने बताया, वो बड़े खुश हुए। मैं आपको बताता हूँ, वो मोहम्मद अली की बीवी ने कहा, हमने सवाल किया कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर, कि आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है। उसको फिर मोहम्मद अली की बीवी ने इस बात से बदल दिया कि तुम सबसे ज्यादा डरते किस चीज से हो, तो मोहम्मद अली कहने लगे तुमसे सबसे ज्यादा डरता हूँ। तो हस्ब दस्तूर उनकी हर बात में मजा होता तो हम सब हंसने लग गए, मोहम्मद अली की बीवी लानी अली भी हंसने लग गई और सब कुछ। तो उसमें फिर मोहम्मद अली बीवी ने इसरार के नहीं बताओ कि सबसे ज्यादा किस चीज का तुम्हें डर है। तो थोड़ी देर के लिए मोहम्मद अली खामोश रहे ना, उनका चेहरा भी बिल्कुल संजीदा हो गया, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मजाक कर रहे थे, और फिर कहने लगे मुझे डर सबसे ज्यादा इस चीज का है कि क्या अल्लाह मियां मुझे जन्नत में दाखिल करेगा या नहीं।
तो
और इस पर अभी भी मेरे आंसू आ रहे हैं, और उस पर लानी तो लानी अली जो उनकी बीवी थी वो तो बुरी तरह रोने लगी और हम सब यानी रोने जैसे हो गए, हमारे आंसू आ गए और तो खामोशी हो गई ना, बिल्कुल इंटरव्यू में खामोशी तारी हो गई। तो मैंने फिर उनके हाथ पर अपना हाथ रखा, शायद मेरे पास फोटो मैंने आपको भेजा भी होगा, तो मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रखा और कहा कि नहीं इंशाअल्लाह तुमने इतने नेक काम किए हैं, इतनी गरीबों की खिदमत की है और इतनी सच्चाई पे कायम रहे, हक पे कायम रहे अमेरिका के अंदर। उस जमाने में जब लोग उन्हें देखते थे तो थूकते थे उनके ऊपर कि तुमने अमेरिका के खिलाफ ये किया है वो किया है, वही सारे के सारे लोग फिर मोहम्मद अली से मोहब्बत करने लगे ना। उसी लुईविल में उनका जनाजा, जहां उसी लुईविल में जहां अपने गोल्ड मेडल को उन्होंने पानी में फेंका दरिया में कि मैं गोल्ड मेडल अमेरिका के लिए जीत सकता हूं लेकिन अमेरिका के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकता। तो ये सारी चीजें नजर के सामने गुजरने लगी, तो मैंने उन्हें जब तसल्ली दी हाथ पे हाथ रख के कि मोहम्मद अली अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह आपको जन्नत में दाखिल करेंगे, तो मेरी तरफ बहन इस नजर से यास्मीन उन्होंने देखा कि जैसे कह रहे हूँ कि क्या तुम्हें अपना पता है कि तुम जन्नत में जाओगे।
तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको आज याद करने का हमने भी मौका फराहम किया,
याद आ रही हैं और मेरे आंख में तो आंसू भी है,
आंसू भी आ रहे हैं। और हम
ये सबसे मेरी उनके साथ बहुत काम किए, बहुत उनके साथ मार्च किया, बहुत काम किए, लेकिन ये याद मेरे जहन से कभी महफ नहीं होती।
अच्छा, वो जो जो उनकी ज़िंदगी का एक और जो इम्पोर्टेंट जो उनकी शख्सियत का पहलू था कि वो अपने मद्दाहों की भी बहुत कदर करते थे और वो फ्लायर्स के अपने उन सूटकेस उनके साथ होते थे जब वो एयरपोर्ट पर उतरते थे तो ऑटोग्राफ उन फ्लायर्स पर देते थे जिस पर उनकी उनके उनके बारे में।
बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने उन्हें एयरपोर्ट पर देखा भी और फिर मेरे सामने वो अपने कमरे में जाके अपना वो सूटकेस तो नहीं लेकिन अब वो आधे सूटकेस होता है जिसमें पहिए लगे होते हैं, लोग जहाजों में जाने वाले लेके घूम रहे होते हैं पहिए, तो वो उसको भर के रखते थे चीजों से। तो लोग पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, कोई कागज दे रहा है, कोई तस्वीर दे रहा है कि भाई इस पे दस्तखत कर दे ऑटोग्राफ, तो उन्होंने लोग जो ऑटोग्राफ लेना चाहते थे वो सबको देते थे, लेकिन उन्होंने अपने इस्लाम से मोहब्बत और लोगों की उनसे मोहब्बत दोनों को मिला के एक नई चीज ईजाद कर ली। वो ये था कि वो फिर दिन में बैठ के एक आध घंटा लगाते थे और 400-500 ब्रोशर्स थे जिसपे दस्तखत कर देते थे। तो फिर उन्होंने ये निकाला और जैसे ही उनकी आवाज़ बोलना कम होता चला गया तो वो फिर ये तहरीर के जरिए दावत ज़्यादा देनी शुरू कर दी थी। लोगों की मोहब्बत के लोग चाहते हैं कि ऑटोग्राफ लें, वो उसको पूरा करते थे और साथ में इनकी मोहब्बत ये कि लोगों को इस्लाम की दावत दें तो वो अपने ऑटोग्राफ किए हुए बस्ते में से निकाल के वो लोगों को देते चले जाते थे। एयरपोर्ट पे भी यही काम कर रहे होते थे।
अच्छा अच्छा, तो ये उनकी शख्सियत की एक खूबी,
जहाँ जाएं लोग घेर लेते थे ना उन्हें, जहाँ भी हों यानी जहाँ भी जाएं लोग हर तरफ घेर लेते थे उन्हें, चाहे वो गोरे हों या काले हों या पाकिस्तानी हों या जापानी हों, दुनिया भर में जाने जाते थे, दुनिया भर में लोग घेर लेते थे, दुनिया भर के लोग ऑटोग्राफ चाहते थे और वो ऑटोग्राफ का उन्होंने ये निकाल निजाम बनाया हुआ था कि वो अपने बस्ते से निकाल के देते थे लोगों को।
अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, आपने बहुत से लम्हात, आपको ये मौका मिला कि आप मोहम्मद अली के साथ रहे, उनके साथ काम किया मुख्तलिफ इशूज़ पर, इस्लामी इशूज़ पर, और दूसरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपको उनके साथ बैठने का एज़ाज़ हासिल हुआ, तजर्बा हुआ। अब ये बताइए कि अब जबकि मोहम्मद अली हमें नहीं रहे और दुनिया एक अजीम बॉक्सर से महरूम हो गई है, तो बॉक्सिंग की दुनिया के लोगों को बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने में किस तरह मोहम्मद अली की ज़िंदगी एक सबक साबित हो सकती है?
अगर हर बॉक्सर मोहम्मद अली की तरह जंग के खिलाफ खड़ा हो, हर बॉक्सर मोहम्मद अली की तरह तशद्दुद के खिलाफ खड़ा हो और हर बॉक्सर मोहम्मद अली की तरह इंसानों से मोहब्बत करे और उस पर थोड़ी बहुत शायरी का चूरन भी डाल दे तो बॉक्सिंग बहुत आगे जाएगी। लेकिन अगर बॉक्सिंग को आपने महदूद रखा मुक्केबाजी तक तो वो फिर मुक्केबाजी ही रहेगी और वो इतनी आगे नहीं जाएगी। तो मोहम्मद अली और अगर बॉक्सर मुसलमान भी हो जाए जिस तरह माइक टायसन मुसलमान हुए तो फिर एकदम जो है वो बॉक्सिंग नुमाया होनी शुरू हो जाएगी। तो बॉक्सिंग को आगे ले जाने का नुस्खा तो बिल्कुल सामने है। आप हक की बात कीजिए, सच पे कायम रहिए, अदल की बात कीजिए, रेसिज्म के खिलाफ बात कीजिए, जंग के खिलाफ आप खड़े हों और अगर साथ में आप मुसलमान भी हों तो क्या बात है। इस तरीके से मोहम्मद अली का नुस्खा जो था वो ये था। और हाँ, उसमें थोड़ा बहुत आपको गाना बजाना भी आना चाहिए और अगर थोड़े खूबसूरत हो तो कोई हर्ज नहीं है।
वो तो खैर अब आपके बस में नहीं है, वो तो जो है वो तो है।
जो अल्लाह ने आपको नवाजा है वो आपको नवाजा है, लेकिन आपके शख्सियत का हुसन जो था वो आपकी शक्ल के हुसन से ज्यादा आगे था।
बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद अली ने अमरीकी मुसलमानों को एतमाद दिलवाने में एक अहम किरदार अदा किया।
बिल्कुल, न सिर्फ अमरीकी मुसलमानों को बल्कि अमरीका में जो लोग जंग के खिलाफ हैं उनको एतमाद देने के लिए, अमरीका में जो लोग तासुब के खिलाफ हैं, देखें हमारे पाकिस्तान में भी तरह तरह के तासुबात हैं, अमरीका में भी तरह तरह के तासुबात हैं, मोहम्मद अली ने तासुबात के खिलाफ काम किया, पठानों के खिलाफ, महाजरों के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, बलोचियों के खिलाफ बोलना, हर महफिल में लोग इस तरह बातें करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं है कि बलोची के साथ या पठान के साथ खाना ना खाएंगे या नमाज नहीं पढ़ेंगे या उनको रेस्टोरान में दाखिल होने से रोकेंगे। अमरीका में सब कुछ होता था। मोहम्मद अली इन चीजों के खिलाफ खड़े हुए, तो मोहम्मद अली का जो पैगाम है उस पैगाम को आगे ले जाने के लिए मैं समझता हूं कि आज के नौजवान चाहे पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, दुनिया में कहीं हो, पहली चीज तो यह है कि आप सच पे कायम हो, दूसरी चीज यह है कि आप अदल के लिए जद्दोजहद कीजिए, फिर आप खिलाड़ी होंगे, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो जो मैंने कभी नहीं खेली, या हॉकी खेल रहे हो जो मैं खेलता था, या बॉक्सिंग में आप हो, या आप सहाफी हो, आपकी इंशाल्लाह इंसान और जमाना कदर करेगा, मुसलमान भी कदर करेंगे और अमरीकी भी कदर करेंगे। तो न सिर्फ मोहम्मद अली सबसे ज्यादा नामवर मुसलमान थे अमरीका में बल्कि सबसे ज्यादा नामवर जंग के खिलाफ खड़े होने वाले, सबसे नामवर अदल के लिए खड़े होने वाले भी वही थे।
और वो मेडल जो उन्होंने ओहायो दरिया में फेंका था उनको फिर वापस एक अंदाज में मिला जब उन्होंने ओलंपिक की मिशल रोशन की थी।
जी हाँ जी हाँ, जब वो ओलंपिक्स हुआ तो उनकी उनका मेडल उनको नए सिरे से वापस किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने देखे, अमेरिका में ये है कि अमेरिका में अदल का निज़ाम बहुत जुल्म और ज्यादती भी हमारे मुल्क में होती है और हम लोग जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़े होते हैं, मुसलमान ब्लैक लाइव्स मैटर के साथ खड़े होते हैं, मुसलमान जो है लैटिनो इमिग्रेशन राइट्स के लिए जब मुजाहरे करते हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं, हम गरीबों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन साथ के साथ अमेरिका में अदल का निज़ाम भी बेहतरी की जानिब बनता है। वही लोग जिन्होंने उनके बॉक्सिंग के करियर को ख़त्म कर दिया, चंद साल के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके उसको भी बहाल कर दिया।
तो और 1998 में उनको अक्वामे मुत्तहिदा का पयाम्बर अमन करार दिया गया और 2005 में अमेरिका का आला तरीन शहरी एजाज़ सदारती तमगा बराए आज़ादी भी दिया गया। तो वो अपने दामन में दुनियावी एजाजात तो लेकर गए ही, लेकिन उन्हें जो सबसे बड़ी चीज़ मिली वो दुनिया भर से मोहब्बत इज्जत थी, जो उन्हें आम लोगों ने भी दी, आम मुसलमानों ने भी दी और आम अमरीकियों ने भी दी और अमरीकी हुकूमत ने भी दी।
क्या बात है, आपने बहुत प्यारे तरीके से ये बात कही कि हर जानिब से उन्हें मोहब्बत मिली और उन सबको उन्होंने मोहब्बत वापस की और अल्लाह ताला उस अजीम इंसान को जन्नतों में भी मोहब्बतों से नवाजे।
आमीन। और जो आखिर में एक बात जिसका हम जिक्र ज़रूर करेंगे कि वो उनकी उनकी शख्सियत की जो ताकत थी वो उनके पट्ठों में थी, वो लेकिन जो चीज़ उनकी कमज़ोरी बनी वो भी पट्ठे बने और वो पट्ठों की बीमारी का ही शिकार हुए और 32 साल तक इस मर्ज़ के साथ वो ज़िंदा रहे, ये अजीब बात थी। तो क्या इसकी वजह डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उनके दिमाग पर कुछ चोटें लगी थी?
कुछ लोगों का कहना ये है कि पार्किंसंस जो है इनको उस वजह से हुआ, लेकिन ये कि इस पे खासी तहकीक की ज़रूरत है, इस पे इत्तेफाक सबका नहीं है कि बॉक्सिंग ही की वजह से होता है, लेकिन अब बॉक्सिंग में बहुत सी एहतियात की जा रही है कि लोगों के बॉक्सिंग में और बाकी खेलों में लोग जख्मी ना हों। एक दिलचस्प बात यह है कि 30 साल से हमारे भाई मोहम्मद अली को पार्किंसन थी और 30 साल ही से हमारे एक और भाई और दोस्त जो कराची में डाउ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट थे और यहीं शिकागो में बहुत करीब ही मेरे, जहां मैं बैठा आपसे बात कर रहा हूं यहां से करीब ही नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रोफेसर भी हैं और स्कॉलर भी हैं, शिकागो ट्रिब्यून का कहना यह है कि उन्होंने दरियाफ्त की है वो जीन जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होती है। और अब उनका डॉक्टर टीपू सिद्दीक का कहना यह है कि अब चंद साल के अंदर पार्किंसन के इलाज भी दरियाफ्त होगा उस बुनियाद पर कि उन्होंने वो जीन दरियाफ्त कर लिए। तो अगर ये जीन की वजह से हुआ है पार्किंसन जो इन्होंने दरियाफ्त किया है, फिर तो बॉक्सिंग इसकी वजह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंसान की यानी तबीयत जो है अभी तक इंसान के जिस्म को बहुत कम लोग समझ पाए हैं। एक डॉक्टर से मैंने अपने बेटे के पूछा कि इंसान को कितना पता है इंसानी जिस्म का, तो वो हंसने लगे, कहने लगे शायद 10% हमें पता है, बाकी हम तीर तुक्के चलाते हैं। तो इंसान का जिस्म बजात खुद जो है एक जहां है जिसको अभी हम समझ रहे हैं। तो ऐन मुमकिन है कि बॉक्सिंग का कोई ताल्लुक हो पार्किंसन से जिस तरह लोगों का ख्याल है, लेकिन डॉक्टर टीपू सिद्दीक ने तो जेनेटिक रीजन दरियाफ्त किया है और उस जीन को उन्होंने दरियाफ्त करने की बुनियाद पर इंशाल्लाह अब उसका इलाज निकल आएगा। तो एक मुसलमान 30 साल परेशान रहा इससे और दूसरा मुसलमान 30 साल मेहनत तहकीक करता रहा कि इसका इलाज कैसे दरियाफ्त हो।
डॉक्टर टीपू सिद्दीक का इंटरव्यू हम अपने इस प्रोग्राम में पहले भी नष्ट कर चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी किसी प्रोग्राम में इस हवाले से उनको एक बार फिर मधु करें और बताएं कि वो मर्ज़ जिसमें मोहम्मद अली मुब्तला हुए और 30-32 साल उन्होंने इसमें गुजारे, उसका इलाज अब कितनी दूर है और उन लोगों के लिए जो इस मर्ज़ में इस वक्त मुब्तला है कितनी देर और इंतज़ार उन्हें करना होगा कि वो इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। एक सवाल आपसे चलते चलते करूँगी कि मोहम्मद अली ने गुर्बत भी देखी, बेतहाशा दौलत भी देखी, लेकिन उनका किरदार वही रहा और दुनिया ने देखा कि उन्होंने जिस भी फील्ड में जिस माहौल में भी वो रहे उन्होंने अपना किरदार बुलंद रखा। तो इंसान की शख्सियत में उसका किरदार कितना अहम है, मोहम्मद अली की ज़िंदगी के हवाले से आप मुख्तसरन इस वक्त क्या कहेंगे?
आपने बहुत सही कहा, मोहम्मद अली गुर्बत और दौलत सब कुछ उन्होंने देखी, लेकिन वो जिसे हम किरदार का फर्द कहते हैं ना, जिसे हम शरीफ इंसान कहते हैं, वो ان میں تھا. اور جب وہ جب مسلمان بنے تو ان کے کردار میں مزید پختگی آئی, اچھے انسان بنے, سخاوت کا ثبوت دیا, نہ صرف ایک مسجد بنائی, بچوں کا خیال رکھنا, پارکنسن ڈیزیز کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا, میوزیم بنانا, دنیا بھر کے کاموں میں جہاں کوئی بلائیں گے بغیر پیسے مانگے ہوئے. یہاں لوگ ایسے ہیں کہ $50,000 تو مسلمان ہی ہیں جو تقریر کے مانگ لیتے ہیں امریکہ میں. تو وہ بہت ہی نیک انسان تھے جو ہر ایک سے اصول کی بنیاد پہ ربط رکھتے تھے اور کسی کے دشمنی انہوں نے مستقل اختیار نہیں کی.
بہت شکریہ عبد المالک مجاہد صاحب ہمارے پروگرام کے لیے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالنے کا. آپ کا
بہت بہت شکریہ یاسمین, آپ کی اردو نے میری اردو کو زندہ کر دیا.
بہت السلام علیکم, تھینک یو, اللہ حافظ. پروگرام کے تصویری تعارف اور ہمارے فیس بک پیجز پر سننے کے لیے ہمارے لنکس ہیں facebook.com/hardamrawahezindagi. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.